नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला जारी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। सीरिया के सुरक्षा बलों और अब्दस्त राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़पों में 1,000 से अधिक लोगों की मौत। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज से शुरू। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 252 रन का लक्ष्य दिया है और अगर ताजा समाचार हम देखें तो इस समय 36 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और भारत ने 3 विकेट पर 166 रन बना लिए हैं। भारत ने आज अपनी शुरुआत दमदार की और कप्तान रोहित शर्मा ने 83 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से शानदार 76 रन की पारी खेली। उनका साथ देते हुए शुभमन गिल ने 31 रन बनाए। इसके बाद भारत के लिए एक बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में रहा, जिन्होंने 1 रन बनाया और थोड़ी सी भारत की जो पारी है यहां पर आकर थोड़ी सी लड़खड़ाई। और मैच के ऊपर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रसिद्ध खेल पत्रकार राकेश राव जुड़े हुए हैं। राकेश राव जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी समाचार में। और इस समय जो स्थिति मुझे लगता है कि जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है, समय दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है, लोगों की सांसें रुकी हुई हैं और जिस तरह से भारत की ताबड़तोड़ शुरुआत हुई तो भारत एक मजबूत स्थिति में लग रहा था, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ और फिलहाल सबकी सांसें रुकी हुई हैं। कुछ कह नहीं सकते मैच किस ओर जाएगा और आपके चेहरे पर भी मैं यही चीज पढ़ पा रहा हूं, क्या कहेंगे राकेश?
देखिए, जिनकी सांसें रुकी हुई हैं जी, मैं तो ये कहूंगा कि उनका जो है दिल बड़ा नहीं है
जी,
क्योंकि ये मैच देखिए क्रिकेट में एक बड़ी सिंपल चीज होती है
जी,
अगर हर चीज बराबर की चल रही है और आपके पास 7 विकेट हैं और जब तक आपका रिक्वायर्ड रन रेट, मैं ये बात कर रहा हूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट की
जी,
अगर आपकी रिक्वायर्ड रन रेट 8 रन से नीचे है, अभी जस्ट 6 के आसपास है, अब 6 से भी कम हो गई है बिकॉज क्योंकि अभी एक छक्का पड़ गया
जी,
लेकिन ये मैच अभी इंडिया के हाथ में है, टोटल इंडिया के कंट्रोल में है ये मैच। और मैंने ये कहा और एक कैच ड्रॉप हो गया कहते कहते, तो ये जो मैच है फिलहाल इंडिया के हाथ में क्योंकि इंडिया के पास वो 7 विकेट एक्स्ट्रा हैं
जी। और एक अपडेट दे देते हैं, भारत को 79 रन की जरूरत है 81 गेंद में फिलहाल, ये अपडेट है। और करंट रन रेट जो है 4.74 का है जबकि रिक्वायर्ड रन रेट 5.85 का है।
बिल्कुल, देखिए वो तो स्टार्टिंग नेट रन रेट मतलब जो था जबकि रिक्वायर्ड रेट थी, अभी जस्ट 6 से थोड़ा नीचे है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो टीम है न्यूजीलैंड की, ये 80 रन अगर आपको बनाने हैं तो आपको कम से कम दूसरी टीमों के साथ जितने आप 90 रन बनाएं या उससे थोड़ा ज्यादा, क्योंकि ये 80 रन के बनते बनते वो कम से कम 10 रन रोक लेते हैं ये लोग, आपके जो यू नो 3 रन को 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, 4 को 2 में, 4 को 3 में, तो आपको रन ज्यादा ही बनाने पड़ते हैं क्योंकि बहुत अच्छा फील्डिंग यूनिट है न्यूजीलैंड जो है, ऑस्ट्रेलिया जैसे ऐसी टीम्स, तो मेहनत है मगर जो कंट्रोल है, देखिए पेस इंडिया के हाथ में है अभी, क्योंकि जैसे ही रिक्वायर्ड रन आपके 50 से नीचे आ जाएंगे
जी,
एकदम से वो जो प्रेशर जो है वो न्यूजीलैंड के ऊपर और ज्यादा हो जाएगा। ये क्रिकेट का जैसे एक 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 अगर आप सिंपल प्रोग्रेशन देखेंगे, क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है, आपको अपने ऑपोजिशन की जो उम्मीद है आपको उम्मीद को तोड़ना है, आपको मैच कोई जल्दी में खत्म नहीं करना, कोई आपको अगर 45 ओवर्स में ये मैच खत्म नहीं करना है, आप चाहे तो लास्ट गेंद में ये मैच खत्म करें लेकिन ऑपोजिशन की जीतने की उम्मीद आप तोड़िए और इंडिया अभी वही कर रहा है।
बिल्कुल, भारत को 76 रन की जरूरत है 78 गेंद में और इस समय सबकी सांसें थमी हुई और सबकी निगाहें इस समय दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर लगी हुई है और उम्मीद करते हैं कि भारत एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बनेगा।
बिल्कुल बनेगा
और भारतीय टीम को ढेर सारी बधाई भी देते हैं। और राकेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में और तमाम के जो आज के मैच पर हम सबके जो भी सवाल थे उसका जवाब दिया, बहुत
बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, थैंक यू।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं, ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। सत्र का ये चरण 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 20 बैठकें होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल मणिपुर के लिए बजट पेश करेंगी। पिछले महीने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सत्र के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान मांगों और संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा और मतदान किया जाएगा।
बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान वित्तीय कामकाज के अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा होगी। इनमें विधि संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक, आवर्जन और विदेशी विधेयक तथा रेलवे संशोधन विधेयक शामिल हैं। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से शुरू हुआ, जो 13 फरवरी तक चला। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2025-26 लोकसभा में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट भी लोकसभा में पेश की गई। बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा की उत्पादकता 112% रही। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने आज जम्मू में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में क्षेत्र के सुरक्षा परिदृश्य, आतंकवाद विरोधी अभियानों और उभरते खतरों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात और आईजी भीम सेन टूटी और वीके बिरदी सहित शीर्ष अधिकारी बैठक में शामिल हुए। चर्चा किए गए प्रमुख बिंदुओं में आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों की समीक्षा करना और विशेष रूप से घुसपैठ के आसपास उभरते खतरों को संबोधित करना शामिल था। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उपायों को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिन की यात्रा पर मॉरिशस जाएंगे। श्री मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। एक रिपोर्ट।
यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल से मिलेंगे और प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री शिव सागर राम गुलाम और पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए शिव सागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर मॉरिशस के लोगों में काफी उत्साह है। मॉरिशस में मोरिशेश्वर शिव मंदिर के प्रभारी सतीश दयाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक मामलों में नेतृत्व पर गर्व महसूस करते हैं। मॉरिशस से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की 3 दिन की यात्रा पर जाएंगी। पहले दिन राष्ट्रपति हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति ब्रह्म कुमारीज के स्वर्ण जयंती समारोह पर उनके राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ भी करेंगी। अगले दिन राष्ट्रपति बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मिथिला की धरती ज्ञान, संस्कार और शोध की धरती है। उन्होंने ये बात गुजरात के गांधीनगर में आयोजित शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में कही। श्री शाह ने कहा कि मिथिलांचल में संवाद से समाधान की परंपरा स्थापित हुई है
और लोकतंत्र की एक मजबूत ताकत मिथिलांचल ने खड़ी कही, जो सालों तक पूरे देश और दुनिया को संदेश देती रही। मिथिला एक प्रकार से शास्त्रार्थ की भी भूमि रही, राजा जनक और आज्ञवल्कल का शास्त्रार्थ हो या मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हो, संवाद से समाधान की परंपरा समग्र विश्व के अंदर सबसे पुख्तता से हुई है तो मिथिलांचल में हुई है।
गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज देश में ड्राइवरों के लिए एक सहकारी संगठन बनाने की सरकारी योजना की घोषणा की। श्री शाह ने अहमदाबाद जिला सहकारी एडीसी बैंक के स्वर्ण शताब्दी समारोह में कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 2 लाख सेवा सहकारी समितियों और प्राथमिक दूध उत्पादक समितियों को सहकारी आंदोलन में एकीकृत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के 48वें वार्षिक समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह संस्थान देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और क्षमता निर्माण गतिविधियों के संचालन में अग्रणी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सीरिया में देश के सुरक्षा बलों और अपदस्त राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच हुई झड़पों में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। गुरुवार को लताकिया प्रांत में शुरू हुई झड़पें अब भूमध्य सागर तट तक फैल गई हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि 745 नागरिकों के अलावा सरकारी सुरक्षा बलों के 125 सदस्य और अपदस्त राष्ट्रपति बशर असद से जुड़े सशस्त्र समूहों के 148 लोग मारे गए हैं। समूह ने बताया कि लताकिया के कई क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। राष्ट्रपति ने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ से मुलाकात की और उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित एम्स में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की। उपराष्ट्रपति धनखड़ को बेचैनी की शिकायत के बाद कल रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने बताया कि श्री धनखड़ की हालत फिलहाल स्थिर है। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा ने आज कहा है कि उनका संगठन देश के अन्य शहरी स्थानीय निकायों के साथ कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के संबंध में अनुभव साझा करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। श्री वर्मा ने गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पटना में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के पूर्ण सत्र में अपने विचार व्यक्त किए। आयुक्त ने कहा कि इंदौर ने अपने बेहतरीन कचरा पृथक्करण और कचरा आधारित राजस्व मॉडल के मूल सिद्धांत के कारण पिछले कई स्वच्छ भारत सर्वेक्षणों में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपना दर्जा बरकरार रखा है।
एक बहुत ही रोबस्ट हमारा जो आईसी मैकेनिज्म है, लोगों को सिखाते हैं, जो सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं देते हैं उनका हम कचरा नहीं लेते हैं, उनको पेनलाइज करते हैं और पेनल्टी हम इतनी लगाते हैं कि इंदौर शहर में डेली 3-3.5 लाख की पेनल्टी लगती है, क्योंकि हम लोग स्वच्छता के ही टर्म्स में अपनी चीजों को काउंट करते हैं, तो 3 दिन में कचरे की गाड़ी खरीद लेते हैं, इतना पेनल्टी लगाते हैं हम लोग।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण की आज औपचारिक शुरुआत हुई। ये प्रतियोगिता 12 मार्च तक चलेगी। इन खेलों में देशभर के 550 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलों के पहले दिन पिछले चैंपियन सेना की टीम ने अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। आज उसने 2 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। हिमाचल प्रदेश ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक पर कब्जा किया। मेजबान जम्मू और कश्मीर ने पहले दिन 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांचक मुकाबला जारी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने जम्मू में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। सीरिया के सुरक्षा बलों और अपदस्त राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों के बीच झड़पों में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज से शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।